नमस्कार भारत, तारीख 27 सितंबर, दिन बुधवार। मैं हूँ वात्सल्य राय। सऊदी अरब में ड्राइविंग सीट पर नजर आएंगी महिलाएं, पहली बार मिली इजाजत।
Ladies and gentlemen, that a few minutes ago, a royal decree has been issued in Saudi Arabia giving women the right to drive.
भारतीय सेना का दावा, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम का हमला नाकाम, एक अन्य मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर की मौत।
पुलिस महानिदेशक का कहना है कि मुजाहिदीन ने उनको यहां बाकायदा तौर पे मुजाहिदीन की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया था और यहां भेजा था।
और शादी के बाद लव जिहाद के नाम पर भीड़ के हमले का शिकार बने बिहार के युवक युवती ने बीबीसी को बताई आप बीती।
मेरे मम्मी पापा और बहन और पता नहीं मोहल्ले के कुछ लोग को साथ लेकर आए थे, वो लोग गाली गलौज तोड़ फोड़ मारपीट करने लगे हम दोनों के साथ।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम करने का दावा किया है। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा बलों ने एक टॉप हिजबुल कमांडर की मुठभेड़ में मौत का भी दावा किया है। भारतीय सेना के प्रवक्ता के मुताबिक केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर उन्हें वापस भेजने पर मजबूर कर दिया है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई ने सेना के सूत्रों से बताया है कि इस टीम में 7 से 8 सदस्य थे। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी शाह सलमान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की इजाज़त दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी मंत्रालयों को इस मामले में एक महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी है और इस आदेश को अगले साल लागू किया जाना है। सऊदी अरब अकेला ऐसा देश है जहां पर महिलाओं के गाड़ी चलाने पर रोक है। महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिलाने के लिए सालों तक इस देश में अभियान चलाया गया और कई महिलाओं को इस पाबंदी को तोड़ने के लिए सजा भी दी गई। इराक में कुर्द नेता मसूद बरजानी ने कहा है कि इराक की सरकार कुर्द लोगों को स्वायत्तता के लिए जनमत संग्रह को लेकर धमकियां देने से बाज आए। उन्होंने बगदाद में सरकार से धमकियां देने के बजाय बातचीत करने की अपील की है। वहीं इराकी केंद्र सरकार ने जनमत संग्रह के फैसले का विरोध किया है। इराक की सरकार ने कुर्द इलाकों के सभी हवाई अड्डों को नियंत्रण में देने के लिए 72 घंटों का समय दिया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी ने कहा है
اهم هذه القرارات هو ايقاف الرحلات الجويه القادمه من الدول الاخرى من خارج العراق من والى الاقليم الى مطار
मंत्री परिषद ने कुर्दिस्तान में इरबिल और सुलेमानिया में हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही रोकने का फैसला किया है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान के सम्मान में हवाई अड्डों को का नियंत्रण सरकार को नहीं दे दिया जाता। हमारे फैसले को मानने के लिए उनके पास 3 दिन यानी कि शुक्रवार तक का समय है। ये थे हैदर अल अब्दी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि वो इस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं लेकिन वो उसकी प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बहुत बुरा बर्ताव किया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। व्हाइट हाउस में स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय के साथ एक साझा प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
We are totally prepared for the second option, not a preferred option, but If we take that option, it will be devastating. I can
हम दूसरे विकल्प के लिए तैयार हैं। हाँ, ये विकल्प हमारी प्राथमिकता नहीं है लेकिन अगर हमें ये रास्ता चुनना पड़ा तो यकीन मानिए कि ये उत्तर कोरिया के लिए विनाशकारी होगा। ये सैन्य विकल्प होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये कदम उठाएंगे। किम जोंग उन ने बहुत बुरे काम किए हैं, ऐसी चीज़ें कही हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी और इसके जवाब में हमें भी बहुत कुछ कहना पड़ा है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में आर्थिक संकट के 10 साल बीतने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत पतली होने की चेतावनी दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अभी तक बैंक आर्थिक संकट से उभर नहीं पाए हैं और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों को धराशाही नहीं होने दिया जा सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट अ फ्यू मिनट्स अगो अ रॉयल डिक्री हैज बीन इशूड इन सऊदी अरेबिया गिविंग वुमेन द राइट टू ड्राइव।
तालियां संयुक्त राष्ट्र में बजी उस हक के लिए जो सऊदी अरब की महिलाओं को मिलने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुल्ला अल मौलिमी कह रहे थे, मिस्टर चेयरमैन, ये जानने में आपकी दिलचस्पी होगी कि अब से कुछ मिनट पहले सऊदी अरब में एक शाही आदेश जारी किया गया है जिसमें महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया गया है। ये सऊदी समाज, महिलाओं और पुरुषों के लिए ऐतिहासिक दिन है। गौरतलब है कि सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार पहली बार हासिल होने जा रहा है। सऊदी शाह सलमान ने इस बारे में आदेश जारी किया है जो अगले साल जून से अमल में आएगा। यह अब तक दुनिया का ऐसा इकलौता मुल्क था जहां महिलाओं के पास गाड़ी ड्राइव करने का हक नहीं था। महिलाओं को ड्राइविंग का हक दिलाने के लिए बरसों से आवाज उठाई जा रही थी। इस बीच जिन महिलाओं ने प्रतिबंध तोड़कर गाड़ी चलाई उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता लाउजैन अल हथ लाउल को इसी साल ड्राइविंग के लिए 73 दिन हिरासत में रहना पड़ा था। यह आदेश आने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, थैंक गॉड, यानी खुदा का शुक्र है। यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जबकि सऊदी अरब के एक धार्मिक नेता का बयान विवादों में है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं गाड़ी चलाने के काबिल नहीं होती क्योंकि उनके पास दिमाग का केवल 1/4 हिस्सा होता है। अमरीका ने सऊदी अरब के फैसले का स्वागत किया है। अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैदर नाउट ने कहा,
If Saudi women are now able to drive, certainly here in the United States, we would certainly welcome that.
अमरीकी प्रवक्ता कह रही थी कि अगर सऊदी महिलाएं ड्राइविंग कर पाएंगी तो निश्चित ही यहां अमरीका में हम इसका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि ये सही दिशा में उम्दा कदम है। हम खुश हैं और मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के हिस्से तालियां और तारीफें आईं तो पाकिस्तान को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध पाकिस्तान मूल के लोगों ने ही किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के महाजिर लोग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM USA के सदस्यों ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपना विरोध जताया। पाकिस्तान में रहने वाले महाजिर लोग भारत के विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे। महाजिर लोगों ने अल्ताफ हुसैन की अगुवाई में सन 1984 में MQM की स्थापना की और जल्द ही कराची शहर में ये सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। लेकिन अब इस पार्टी के कई टुकड़े हो चुके हैं और अल्ताफ हुसैन के गुट वाली MQM के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत करते हुए आजादी की मांग करते हैं। विरोध प्रदर्शन के एक आयोजक इमरान हुसैन कहते हैं,
हमारे 20,000 से ज्यादा लोग उसमें कत्ल किए जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के हाथों कराची और हैदराबाद में। उसके खिलाफ हम यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं, जो जेनोसाइड चल रहा है। फिर अल्ताफ हुसैन साहब पर जो मीडिया ब्लैकआउट है उसके खिलाफ हम मुजाहरा कर रहे हैं और अक़वामे मुत्तहिदा को ये दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और देखें किस तरीके से मुहाजरों का कत्लेआम पाकिस्तान में किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हम यहाँ मुतालबा भी करने आएँ कि मुहाजरों को हक़ खुद इरादियत राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए ताकि वो अपना फैसला कर सकें और अपनी मुस्तकबिल का फैसला है वो आज़ादी के साथ कर सकें। उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या वो पाकिस्तान की अलहदगी चाहते हैं।
विरोध करने वाले पाकिस्तानी मूल के महाजिरों का कहना है कि अब उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और हाल ही में कुछ यूरोपीय और अमरीकी नेताओं ने उनके कायद अल्ताफ हुसैन से लंदन में मुलाकात भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बन गया है। लेकिन पाकिस्तान में अब आमतौर पर अल्ताफ हुसैन के गुट वाली MQM को भारत से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली संस्था माना जाता है और इसीलिए अब जाहिरी तौर पर MQM का जो गुट पाकिस्तान में सक्रिय है वो अल्ताफ हुसैन से दूरी बनाने को आतुर भी दिखाई देता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर BBC पर है।
बात भारत प्रशासित कश्मीर की। भारत प्रशासित कश्मीर में कल सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर टीम के एक हमले को विफल करने का दावा किया। वहीं पुलिस ने जानकारी दी कि बारामूला में हुई एक मुठभेड़ में अब्दुल कयूम नजार नाम के एक चरमपंथी की मौत हो गई। इसे लेकर हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की और सबसे पहले मुठभेड़ में हुई चरमपंथी की मौत के बारे में पूछा।
वो 2015 तक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे और उसके बाद उनकी हिजबुल मुजाहिदीन के जो उच्च कमांडर हैं उनके साथ अनबन हो गई थी और उन्होंने अपना गुट लश्कर इस्लाम के नाम से 2015 में शुरू किया था। और 2015 में उन्होंने यहाँ, अगर आपको याद होगा, जो भी यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स थे मोबाइल टेलीफोनी के, उनके टावर्स पे हमले किए थे और कहा था कि यहाँ पे मोबाइल फोन बंद होना चाहिए क्योंकि मोबाइल फोन की सुविधा से ही मिलिटेंट कमांडर मारे जाते हैं। लश्कर इस्लाम के नाम से उनकी ज्यादा छवि यहाँ मानी जाती है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के तौर पे तो वो ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए और उनके एक सहयोगी जो थे, उनका नाम मुजम्मिल था और मौलवी के नाम से वो जाने जाते थे, वो मारे गए थे और उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। वो उड़ी में मारे गए हैं और पुलिस का कहना है कि वो एक इन्फिल्ट्रेशन बिड के दौरान यहाँ आ रहे थे और उनको मारा गया। और पुलिस के महानिदेशक जो हैं एसपी वैद, उनका कहना है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने उनको यहाँ बाकायदा तौर पे हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभालने के लिए नियुक्त किया था और यहाँ भेजा था और बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत और इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत उनको मारा गया ताकि हिजबुल मुजाहिदीन को रिग्रुप करने के लिए जो वो आ रहे थे उस प्रक्रिया को जो है विफल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा धचका है चरमपंथी गुटों के लिए।
जी, कश्मीर से एक और खबर आई। भारतीय मीडिया में खबर चल रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के एक हमले को विफल करने का दावा किया है। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास?
आर्मी के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया से जो सूचना मिली है वो ये है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र केरन में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तान की तरफ से जो बॉर्डर एक्शन टीम, जैसा कि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि बॉर्डर एक्शन टीम जिसको बैट कहा जाता है, उसमें सैन्य अधिकारी भी होते हैं, कमांडो भी होते हैं, वो जब आते हैं तो उनका लक्ष्य ये होता है कि यहाँ पे कुछ सेबोटाज किया जाए या कुछ सैनिकों को मारा जाए। वो जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ बिहेडिंग्स करते हैं, यानी कुछ लोगों को घायल करते हैं या मारते हैं तो फिर चले जाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ये हुआ है कि सेना का दावा है कि उनको वापस भागने पर मजबूर किया गया है। मंगल की दोपहर को 1 बजे ये घटना घटी है, लेकिन जो हमारी सूत्रों से बात हुई है या स्थानीय नागरिकों से बात हुई है उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे घटनास्थल पे केरन सेक्टर में 2 लाशें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो 2 लाशें बैट एक्शन टीम के सदस्यों की हैं या यहाँ हमारे सैनिक अधिकारियों की लाशें हैं। इस पे सेना ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है।
जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर वाराणसी के कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण ने सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसके बाद ये खबर भी आ रही है कि बीएचयू के प्रॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से समीर आत्मज मिश्र। समीर, क्या खबर है, क्या अपडेट है आपके पास?
जी वात्सल, जैसा आपने कहा कि जो चीफ प्रॉक्टर है ओंकार नाथ सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि उनका इस्तीफा वाइस चांसलर ने मंजूर भी कर लिया है। हालांकि कल वाइस चांसलर भी देर रात यहाँ पहुंचे हैं और हमारी उनसे बात हुई है, पर ये जो इस्तीफे की पुष्टि की खबर है वो उसके बाद की है। वाइस चांसलर दिल्ली गए हुए थे कल और देर रात वो लौटे हैं।
खबरें ये भी थी कई जगह की वीसी के अधिकारों में भी कुछ कटौती की गई है, क्या ऐसी कुछ खबरें?
ये खबर चलती रही सारे दिन मीडिया में और इस बारे में हमने खुद वाइस चांसलर से जानने की कोशिश की तो उनका कोई जवाब इस बारे में नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होगा आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये जो दिल्ली जाने की खबर है, बताया ये जा रहा है कि उनको खास तौर पे बुलाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से। उन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन ये पता है कि दिल्ली वो गए तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ उनसे पूछताछ हुई होगी और कुछ न कुछ मंत्रालय भी हो सकता है कि
उन्हें निर्देश भी दिया गया हो। मैं बस एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा और कार्रवाई की बातें जो और बाकी आ रही है, रिपोर्ट दी गई है, क्या छात्रों का कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? गुस्सा उनका ठंडा हुआ है, क्या स्थिति है?
वास्तव में छात्रों का गुस्सा, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत से छात्र तो यहाँ से चले गए हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, चूंकि 2 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय बंद ही है और दशहरे की, दुर्गा पूजा की छुट्टियां हैं। लेकिन अभी अगर छात्रों का देखा जाए तो कल शाम को भी वहां पे प्रदर्शन किए कुछ छात्रों ने, कुछ धरने पे बैठने की भी कोशिश कर रहे थे जिनको वहां हटा दिया गया। तो उनकी प्रतिक्रिया जो अभी तक सुनने और देखने में मिल रही है, उन्हें किसी तरह का संतोष नहीं है, न तो सरकारी कार्रवाई से और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक जो कार्रवाई की है
उससे। बहुत शुक्रिया समीर जी इस पूरी जानकारी के लिए। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री इसके अलावा आर्थिक मसले को भी सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। ये परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देगी। इसे लेकर हमारे साथी आदर्श राठौर ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डीएम दिवाकर से बात की और सबसे पहले पूछा कि कार्यकाल के 3.5 साल बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री ने परिषद का गठन क्यों किया।
आश्चर्य हमें भी हो रहा था कि इतने दिनों से बनी क्यों नहीं, क्योंकि जब नोटबंदी हुआ और पूरे देश के और दुनिया के लोगों ने, जो जिनको थोड़ी भी अर्थशास्त्र की समझ थी, उन लोगों ने उस नोटबंदी को नकारा, तो उसी समय लग रहा था कि अगर प्रधानमंत्री के पास में अच्छे आर्थिक सलाहकार होते तो कतई ऐसी गलती ये नहीं करते। अब अगर इन्होंने अर्थशास्त्री का दल एक तैयार किया भी है तो एक तो पहले के बहुत लेट हो गया है और दूसरा अभी 2019 में चुनाव होने हैं, 1.5 साल इनके पास है। इस 1.5 साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इनके लिए बड़ी चुनौती भरापूर्ण कार्य होगा। बावजूद इसके अभी अगर अर्थशास्त्री अपनी बात कहना शुरू करें, हमें तो उम्मीद दूसरी है। रघुराम राजन किस तरह यहाँ से गए आप जानते हैं, पनगड़िया किस तरह से गए नीति आयोग से आप जानते हैं, जिस तरह के काम करने के तरीके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, उसके आधार पर मैं तो ये उम्मीद नहीं करता कि अर्थशास्त्री के जो सुझाव होंगे उन सुझावों के आधार पर ये कुछ अमल अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा लगेगा कि अगर नई जो नीतियां बने, जो इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार हो, उसमें इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखे जाएं, तो शायद परिस्थितियां जितनी खराब होनी थी वो तो हो गई, लेकिन अब इससे आगे और खराब ना हो।
विवेक देवरॉय को इसका चीफ बनाया गया है जो कि नीति आयोग के भी सदस्य हैं।
विवेक देवरॉय के बारे में तो मेरी ओपिनियन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो नीतिगत पत्र एक तैयार हुआ था जिसमें कृषि पर उन्होंने जिस तरह से अपना पत्र दिया है, उससे तो नहीं लगता है हिंदुस्तान के जो मौलिक चिंतन है अर्थव्यवस्था की, उसकी समझ के साथ वो चलते हैं। अध्यक्ष के नाते जो बात वो कह रहे हैं, अगर वही उन्हीं की बात को समझने के लिए बाकी लोगों को रखा गया होगा, तब तो मैं, मुझे इससे कोई अधिक उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाकी लोगों की बात भी सुनी जाएगी तो शायद कुछ हो।
मोदी सरकार जब बनी थी तब उसने एक तरह से कोशिश की थी कि जो यूपीए के काम करने का तरीका है उससे खुद को अलग दिखाया, तो उसी तरह से जैसे नीति आयोग बना दिया गया, क्या उसी तरह की सोच रही होगी कि हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को जारी नहीं रखेंगे।
योजना आयोग में कम से कम इतनी बात तो थी कि इंटेलेक्चुअल डिसेंट को रिस्पेक्ट मिलता था, यहाँ तक कि कई बार मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भी ईपीडब्ल्यू में उनके कई आर्टिकल सरकार के खिलाफ छपी। नीति आयोग बनने के बाद योजना आयोग का वो स्पिरिट जो था इंटेलेक्चुअल डिसेंट और कंट्रीब्यूशन का, वो खत्म हो गया। समीक्षा इन्होंने की है कई फ्रंट पर, इनके लिए भी चिंता की बात है कि अगर ये नौजवान को डिलीवर नहीं करेंगे तो आगे किस उम्मीद पर ये करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात सबसे महत्व की है कि अब समय इनके पास नहीं है, ये 1.5 साल का वक्त बहुत थोड़ा है। प्रयास यद्यपि शुरू कर दिया है इन्होंने, लेकिन ये बहुत देर का प्रयास। अगर मिड टर्म इवैल्यूएशन हुआ रहता तो भी बातें होती, लेकिन वो तो संस्था खत्म हो गई। प्लानिंग कमीशन थी, हम मिड टर्म इवैल्यूएशन करते थे और मध्य प्लान से ही हम लोग उसके करेक्शन कोर्स के तरफ चलते थे, तो वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, जिसके कारण से ये चुनौतियां और गहरी हो गई।
ये थे प्रोफेसर डीएम दिवाकर। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या है। हरिता कांडपाल मौजूद है अखबारों के साथ। जी हरिता,
आज के अखबारों के पहले पन्ने पर सब जगह ये खबर है कि भारत ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, इसमें लिखा गया है कि भारतीय सैनिक नहीं भेजे जाएंगे अफगानिस्तान। अमेरिका ने कहा था कि भारत अपना रोल अफगानिस्तान में बढ़ाए, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस भारत आए हुए हैं और भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से उनकी मुलाकात हुई है और इसमें भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हर तरह की मदद जारी रहेगी लेकिन भारत सैनिक नहीं भेजेगा अफगानिस्तान में। द हिंदू के पहले पन्ने पर यह खबर है कि गोरखा लैंड जन मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद करीब 100 दिन से चल रहे दार्जिलिंग बंद को वापस ले लिया है। इस दल के प्रमुख बिमल गुरुंग ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यानी कि वहां पर बंद वापस लेने की प्रक्रिया शुरू
हो चुकी है। एक राहत की खबर उस पूरे इलाके के लिए जहाँ जनजीवन लगभग ठप सा हो गया था,
पिछले 100 दिन से ठप था और कुछ लोगों की जाने भी गई थी। यहाँ पर जो भयंकर हिंसा हुई थी उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पन्ने पर यह खबर है कि गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं उनकी कथित गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर हिंसा भड़काने जैसे कई आरोप हैं और पिछले दिनों उनकी काफी सरगर्मी से तलाश हो रही थी पूरे उत्तर भारत में और नेपाल तक इसकी खबरें थी। हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने पर खबर है कि चीन ने पहली बार माना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से हिंदुस्तान ने लिखा है कि चरमपंथ पर पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठाया गया और ये पूछा गया है कि पाकिस्तान को आखिर क्या हासिल होता है आतंकवाद का समर्थन करके,
जो सबसे गहरा दोस्त माना जाता है पाकिस्तान का चीन।
जी बिल्कुल। इसके अलावा एक खबर हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर मैं देख रही हूं, सावधान, अस्पतालों में जानलेवा फंगस फैल रहा है। यह है कैंडिडा ऑरिस और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अस्पतालों में इससे जो है मरीजों को परेशानी हो सकती है,
यानी अस्पताल जाएं तो आप संभल कर जाएं। शुक्रिया हरिता। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रविवार को कुछ लोगों ने हाल में शादी करने वाले एक युवक और युवती पर हमला कर दिया था। इनमें युवती के परिजन भी शामिल थे जो कथित तौर पर उनके धर्म बदलने और शादी करने से नाराज थे। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले ये दोनों युवक युवती अब हापुड़ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जाने के पहले उन्होंने हमारे साथी अभिमन्यु साह को आप बीती बयान की। अभिमन्यु की रिपोर्ट सुना रहे हैं आदर्श राठौर।
वो नजरें चुराते हुए कोतवाली से निकले थे ताकि उन्हें कोई देख न ले। दोनों के कदम उन्मादी भीड़ के खतरे से तेजी से भाग रहे थे। बिहार के सीतामढ़ी का ये जोड़ा एक दिन पहले ही उन्मादी भीड़ से बाल बाल बचा था। लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान है। हमलावर भीड़ में लड़की की बहन और माँ बाप भी शामिल थे। वे इन दोनों को मंदिर ले जाकर शुद्धिकरण कराना चाहते थे, यानी लड़के को हिंदू बनाना चाहते थे। शहर छोड़ने से पहले पीड़ित लड़के ने दहशत के उन पलों को कुछ इस तरह से बयां किया।
हम लोग सो रहे थे, सुबह उठे संडे के दिन, हम लोग तैयार होने जा रहे थे तो इनके मम्मी पापा और इनके बहन आई और इनके साथ दो चार दोस्त पाँच दस लोग मोहल्ले वाले आकर हमारे साथ जबरदस्ती नाम पूछ कर बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उतने देर में पुलिस वाले वहाँ हंगामा हुए आ गए। फिर वो उन्होंने कहा तुम मंदिर चलो, ये चलो, तुमने धर्म इसको क्यों जबरदस्ती चेंज करवाया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप इनसे पूछिए। फिर वो जबरदस्ती हमें छीन छान कर रहे थे। पुलिस वाले वहाँ मौके पर पहुंचे, पुलिस वाले हमें जैसे भी बचाकर हम दोनों को फिर यहाँ थाने ले आए।
शादी कर मुसीबत में पड़े लड़के ने एमटेक किया है और लड़की ने बीएससी तक पढ़ाई की है। दोनों की मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। बीते अगस्त की 25 तारीख को दोनों ने गाजियाबाद की एक मस्जिद में निकाहनामा पढ़ा। इसके 3 दिन बाद गाजियाबाद के निबंधन कार्यालय में शादी को कानूनी जामा भी पहनाया, मगर फिर भी कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। लड़की घटनाक्रम को याद करते हुए कहती है,
हमने पहले निकाह किया 25/8/17 को गाजियाबाद में मस्जिद में एक, और फिर हमने 28/8/17 को गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज की है। मेरे मम्मी पापा और बहन और पता नहीं मोहल्ले के कुछ लोग को साथ लेकर आए थे। वो लोग गाली गलौज तोड़ फोड़ मारपीट करने लगे हम दोनों के साथ। तभी पुलिस आई और वो लोग हमको सुरक्षा से निकालना चाहती थी। वो लोग पुलिस के साथ भी बदतमीजी किए, पुलिस के साथ भी गाली गलौज करने लगे और जबरदस्ती हम लोग को हाथ खींच रहे थे।
सोमवार को उस इलाके में सन्नाटा पसरा था जहां इस दंपति को घेरा गया था। सड़कें खाली नजर आ रही थी, लोग घरों में कैद थे, इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे।
जो ये वाकया हुआ मेरे घर से करीब 600-700 मीटर की दूरी पर हुआ और इस वाक्य में सच्चाई ये है कि अगर पुलिस समय पर ना पहुंचती तो शायद उन दोनों बच्चों को मार दिया जाता। और जो भीड़ उतारू थी वो सिर्फ एक कौमी जनून के नाम पर मोहर लगा के कि ये लव जेहाद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के दोनों बच्चे बहुत दिन से रह रहे थे, कभी कोई मोहल्ले में कोई शिकायत नहीं, किसी तरह का कोई दुर्भावपूर्ण कोई बात नहीं था, किसी से कोई व्यवहार भी गलत नहीं था। और लड़की भी पढ़ी लिखी है और मोहल्ले के लोगों को पता है कि हाँ ये दोनों अलग अलग कौम से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी किसी को कोई दुर्घटना नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ।
बीबीसी को घटना से संबंधित कुछ वीडियो मिले हैं जिसमें पुलिस लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक हेमंत कोटियाल ने लाठीचार्ज की बात स्वीकार की।
यहाँ पर कुछ पब्लिक वाले शिकायत कर रहे थे कि कुछ एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़की के साथ रह रही है। पता करने पर मामला पता लगा कि दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं इस साल और दोनों लोग बालिग हैं, लीगल मैरिज है इनकी और ये अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाह रहे हैं। तो जब पब्लिक ने प्रतिरोध किया, लड़की को अपने साथ लेने की कोशिश की, तो पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं जाने दिया उन लोग के साथ और सुरक्षित थाने ले आई है। पुलिस ने जितना आवश्यक बल है उसका प्रयोग किया ताकि क्या कहते हैं लड़की और लड़के को सेफली हम ले ला पाए।
मगर पुलिस का कहना है कि रविवार को हुई घटना में किसी भी पक्ष ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। लड़का लड़की को सुरक्षित थाने में रखा गया और फिर सोमवार को दोनों अपनी मर्जी से चले गए ऐसी जगह की तलाश में जहां उनके प्यार के बीच कोई धर्म या धर्म का ठेकेदार आड़े ना आए।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर और अब बात कर्नाटक के उडुपी की एक महिला की जो बेहतर कमाई के आस में सऊदी अरब गई थी लेकिन वहां की नौकरी ने उनके लिए नरकीय स्थिति बना दी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
47 साल की विधवा जसिंटा मेंडोंसा की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। मंगलुरु में एक एजेंट ने उनका परिचय एक मुंबई के एक एजेंट से करवाया और जसिंटा खुशी खुशी चली गई। उन्हें बताया गया था कि वह खतर के एक शाही परिवार के पास काम करेंगी। मुंबई के एजेंट ने उन्हें पहले गोवा भेजा, फिर दिल्ली और वहां से उन्हें दुबई ले जाया गया। दुबई से धमम और फिर रियाद होते हुए वह यनबू पहुंची। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वह खतर नहीं सऊदी अरब में काम करेंगी। एक हफ्ते तक तो सब ठीक चला मगर आगे जो हुआ उसे जसिंटा इस तरह बयान करती हैं। वो मुझे खाना नहीं देते थे, जो खाना छूट जाता था वही दिया जाता था। 14 महीने चाय और बिस्किट और कभी कभार जूस पर जीवन बिताया। मुझे सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करना पड़ता था। मैं तो मरने वाली थी। ये थे जसिंटा के शब्द। जब जसिंटा ने बच्चों को अपना हाल बताया तो उन्होंने उडुपी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन से संपर्क किया। जब भारत के दूतावास के अधिकारियों ने जसिंटा के सऊदी मालिक से संपर्क किया तो उन्होंने 25,000 सऊदी रियाल यानी 5,00,000 रुपये मांगे। इतना पैसा जसिंटा के पास नहीं था। फिर जसिंटा को क्या हुआ वो बताती हैं। सऊदी मालिक ने हमारे सर के बाल पकड़े और उस तरह से पीटा जैसे कपड़ों को धोते वक्त पत्थर पर बार बार पटकते हैं। आज डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें बाईं तरफ से सुनाई नहीं देता और खाना भी नहीं चबाया जाता, पिटाई से ऐसा हुआ है। ये थे जसिंटा के शब्द। जसिंटा की रिहाई के लिए उडुपी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के रविंद्र शानबाग ने NRI फोरम के रोहन रॉड्रिक्स से संपर्क किया। शानबाग के अनुसार जसिंटा जब वापस आए तो पता चला कि मुंबई के एजेंट ने उन्हें 4,50,000 रुपयों के लिए सऊदी भेजा था। रोहन रॉड्रिक्स ने पैसों का इंतजाम किया और जसिंटा को छुड़ाया। शानबाग ने BBC को बताया। जसिंटा को जिस रूट से भेजा गया इससे साफ होता है कि वो मानव तस्करी की शिकार बन गई। हमें पता है कि मंगलुरु और आसपास के इलाकों से लोग ऐसे रूट से भेजे गए हैं। केरला के कन्नूर और कोलिकोड और गोवा से भी लोगों को ऐसा भेजा जाता है। अब तक 22 लोगों को तस्करी से हम बचा चुके हैं। ये थे रविंद्र शानबाग के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि शानबाग और जसिंटा ने पुलिस को शिकायत की तो मंगलुरु का एजेंट गिरफ्तार हो गया मगर उसे इस्तेमाल करते हुए मुंबई के एजेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। यानी तस्करी के ऐसे मामले जल्दी बंद होने के कोई आसार नहीं है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और विदा लेने के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
BBC समाचार। भारतीय प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम करने का दावा किया। इसके अलावा भारतीय सुरक्षा बलों ने एक हिजबुल कमांडर की मुठभेड़ में मौत का भी दावा किया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक सऊदी शाह सलमान ने एक आदेश जारी किया है जिसमें महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की इजाजत दी गई है। इराक में कुर्द नेता मसूद बरजानी ने कहा कि इराक की सरकार कुर्द लोगों को जनमत संग्रह के लिए धमकियां देने से बाज आए। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा दिन भर। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com पर। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।